देखिए, ये बहुत पुरानी परियोजना है, कहा जा सकता है कि करीब करीब 2 दशक पुरानी ये परियोजना है, जिसमें पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जो मिड साइज पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिसे कहा जा सकता है, SRS, उसको डेवलप करने का ये प्लान चल रहा है। 1999 से प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन दो हादसों के कारण ये प्रोजेक्ट अटक गया था, लेकिन इसे जो है 2016 में फिर से रिवाइव किया गया और अब ये काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि इसका जनवरी में जो फ्लाइट टेस्ट हुआ है वो काफी कामयाब रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो 2022 तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोटोटाइप है जिसमें एवियोनिक्स को भी काफी बेटर किया गया है और जो जो फ्लाइट सिस्टम्स हैं उन्हें भी अपग्रेड किया गया है, तो अब ये कहा जा सकता है कि एक नई ताकत के साथ ये परियोजना जो है वापस पटरी पर आई है। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले ही उड़ान परियोजना लागू की है सिविल एविएशन के अंदर। भारत में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो। भारत जैसे विशाल देश में कनेक्टिविटी के पर खासा जोर सरकार भी दे रही है और ये इकोनॉमी की जरूरत भी है। तो ऐसे में जो छोटे एयरफील्ड हैं, जो रिमोट एरिया कनेक्टिविटी, जहां रोड या रेल से कनेक्टिविटी को ले जाना मुश्किल है, ऐसे में यदि एयर कनेक्टिविटी होती है तो समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे और इसी योजना के तहत इसे अगर आप एक वाइड प्लान के तौर पर देखें तो उसमें ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट काफी सूट करता है। लागत की दृष्टि से भी देखा जाए तो किसी इस टाइप के एयरक्राफ्ट यदि खरीदे जाएंगे तो उसकी अमूमन कीमत जो है करीब करीब 60-70 करोड़ रुपए प्रति एयरक्राफ्ट पड़ती है और अगर इसका इंडिजिनस प्रोडक्शन किया जाता है तो करीब करीब जो है 40 करोड़ के आसपास एक एयरक्राफ्ट जो है वो कॉस्ट करता है। तो ऐसे में न केवल ये किफायती होगा, जरूरत के लिहाज से भी देखा जाए तो काफी व्यापक जरूरत है एक मिड साइज एयरक्राफ्ट की, और मेक इन इंडिया जिसको की काफी गवर्नमेंट पुश कर रही है उसके लिहाज से भी एक अचीवमेंट होगा यदि भारत अपना एक जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो बना पाता है। तो नेशनल एरोसाइंस लेबोरेटरी जो है वो इसे डेवलप कर रही है और अब भारतीय वायुसेना भी अपनी जरूरतों से, क्योंकि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की जो जरूरत थी कोस्ट गार्ड की या नेवी की और इंडियन एयरपोर्ट की भी जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, उसके मद्देनजर एयरपोर्ट भी इस चीज को पुश कर रही है इस परियोजना को, क्योंकि जो फ्लाइट टेस्ट हैं वो सब एयरपोर्ट के ही सिस्टम इंजीनियर्स ने किए हैं।
जी अच्छा प्रणय, थोड़ा हमें बताएं कि क्या इस कितने पैसेंजर्स इसमें जा सकते हैं अगर ये सफल तरीके से हम बना पाए तो?
देखिए, इसका मिड साइज यानी ये एक छोटा एयरक्राफ्ट है, इसका वजन करीब करीब 7 टन है और जो इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है और इसमें करीब करीब इसे माना जा सकता है 14 से 15 सीटर एयरक्राफ्ट है एक्सक्लूडिंग क्रू, और इस एयरक्राफ्ट से करीब 500 किलोमीटर जो है ये फुल लोड के साथ ये ट्रैवल कर सकता है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से ये जो छोटे कनेक्टिविटी के रूट्स हैं उनको रीइग्नाइट कर सकता है इस तरीके का छोटा एयरक्राफ्ट, जिसका कमर्शियल इस्तेमाल होता है और जो एयरलाइंस हैं, क्योंकि योजना है कि करीब 160 जो है पहले फेज में 160 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट किए जाएं। तो 2022 तक जब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा, क्योंकि अभी तो टेस्टिंग के कुछ फेजेस और बाकी हैं, जो पहला फ्लाइट टेस्ट जो जनवरी में हुआ था वो काफी कामयाब रहा और उसके बाद से सीरीज ऑफ टेस्ट इस समय चल रहे हैं, लेकिन इसके फुल कमर्शियल प्रोडक्शन तक आने में अभी और थोड़ा सा समय लगेगा, करीब करीब 3-4 साल का वक्त और लगना है, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
जी अच्छा, यही मेरा अगला सवाल था प्रणय, कि अगर हम तेजस के डेवलपमेंट की भी बात करें तो काफी लंबा समय लगा, तो क्या अपेक्षा तो है कि ये 2022 तक इंडक्ट हो पाएगा, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है?
बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत का जो इंडस्ट्रियल या कॉम्प्लेक्स या डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाए तो वो काफी कमजोर रहा और भारत आज भी दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में से, खासतौर पर अगर मिलिट्री हार्डवेयर की बात की जाए तो इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में, और खासतौर पर 1998 में जब इस समय इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे भारत के खिलाफ न्यूक्लियर टेस्ट को लेके, तो उसके बाद बहुत सारी परियोजनाएं जो खासतौर पर साइंटिफिक और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड परियोजनाएं थी वो सारी परियोजनाएं रुक गई थी और उसको काफी हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो बाहर से अवेलेबल हो सकती थी, ये जो टेक्नोलॉजिकल मदद भारत तकनीकी मदद चाह रहा था वो उपलब्ध नहीं हो पाई, तो उसके कारण बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो रुकी, अटकी, खिटकी, जिसमें तेजस भी शामिल है, जिसमें सरस भी शामिल है और बहुत सारी परियोजनाएं, लेकिन अब वापस से वो सारी परियोजनाएं पटरी पे आई हैं। चाहे आप तेजस की बात करें तो तेजस के लिए तो 2 स्क्वाड्रन इंडक्ट करने के लिए बाकायदा जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है कि एयरफोर्स उन्हें कहाँ इंडक्ट करेगी, और अब जो है वो एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट से ज्यादा जरूरत की चीज ज्यादा है, क्योंकि अब ये रियलाइज किया भारत ने भी कि चाहे मिलिट्री हार्डवेयर में तेजस जैसा हल्का लड़ाकू विमान हो या फिर कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो, दोनों की बेसाख्ता जरूरत महसूस की जा रही है भारत की इकोनॉमिक सिनारियो या इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम में, और उसके मद्देनजर अब ये जरूरत ड्राइव कर रही है इन परियोजनाओं को। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है, कई रिफाइनमेंट भी हुए हैं, और इस पिछले एक दशक में भी कहा जाए तो भारत के पास आर्थिक संसाधन भी काफी बढ़े हैं, जिससे कि वो इन परियोजनाओं के ऊपर जो जरूरी जो आर्थिक जो बजट है वो अलोकेट कर सकता है। शायद यही वजह है कि ये परियोजनाएं तेजी से बढ़ी हैं, चाहे तेजस की परियोजना हो या इसकी परियोजना हो, और इसके अलावा और भी कई परियोजनाएं हैं जो कि एक काफी इंडिजिनस प्रोजेक्ट है आमका, LCA के बाद में आमका है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर भी काफी तेजी से काम हो रहा है, और उसमें अगर टेक्नोलॉजिकल पार्टनर को भी साथ लेके एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी हो रही है। इन सारी परियोजनाओं को अभी केवल एस्पिरेशनल परियोजनाओं से ज्यादा रियलिस्टिक परियोजनाएं लग रही हैं, हालांकि फिर भी जब तक कि साकार नहीं हो जाता तब तक इंतजार ही करना होगा हमें।
जी प्रणय, एक आखिरी सवाल कि अगर भारत कामयाब हो जाता है एक पैसेंजर प्लेन बनाने में अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी?
बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से कि जहां से हमने शुरू किया था भारत को, अगर 7 दशकों की आप यात्रा को देखें तो इस 7 दशक की यात्रा के अंदर भारत के डिफेंस या भारत का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था उस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, और अगर आप आज भी देखें तो भारत में जितना भारत का जो इंडस्ट्री कहा जा सकता है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो ट्रेडिंग बेस्ड ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कम है। ऐसे में यदि भारत इंडिजिनसली इस एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाता है तो वो उसकी जरूरतों के हिसाब को भी पूरा करेगा, भारत के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप की गई या जो इसरो की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप की गई, उसने भारत को काफी फायदा दिया है, भारत की न केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और छवि बढ़ाई है बल्कि वो भारत के लिए कमाऊ कूद भी साबित हुआ है। जिस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च में इसरो ने कामयाबी हासिल की है, तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और उसे कमर्शियल इस्तेमाल कर पाता है, एक कमर्शियली प्रूवन टेक्नोलॉजी के तौर पर दुनिया के सामने रख पाता है। तो हालांकि ये बात जरूर है कि दुनिया के कई देश जो हैं जो इसके पहले जिन्होंने भारत के लगभग साथ ही अपनी आर्थिक यात्रा शुरू की है, वो भारत से पहले ये कामयाबी अचीव कर चुके हैं, चाहे ब्राजील जैसा देश हो जिसके एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट खुद भारत भी खरीदता है, या चीन हो या अन्य देशों जिन्होंने अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उन प्रोग्राम्स के ऊपर काफी इन्वेस्ट किया, उन्हें बहुत तेजी से डेवलप किया। लेकिन यही कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए, भारत की जरूरत बहुत ज्यादा है इस तरह के जहाजों की, और ऐसे में अगर इंडिजिनसली इस तरीके का जहाज डेवलप होता है तो ये न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि भारत को एक एक्सपोर्ट एज भी देगा।
प्रणय, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।